ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। विप्लव समूह के पिछली गतिविधियों ने उस समूह के आतंकवादी होने के सरकार के दावे को पुष्ट किया है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बासुटाना का कथन। 22वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आज मनाया गया। विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मीडिया काउंसिल को स्वतंत्र, सक्षम और स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित करने की बात पर सांसदों ने दिया जोर। और सीरिया के इदलिब शहर में सेना के हवाई कार्यवाही में कम से कम 21 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बासुटा ने कहा कि विप्लव समूह के बारे में सरकार का जो दावा था कि वो गुट आतंकारी है, इस बात को उसकी पिछली गतिविधियों ने साबित कर दिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णयों को सार्वजनिक करने के लिए आज संचार तथा सूचना तथा प्रविधि मंत्रालय द्वारा आज मंत्रालय में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता तथा संचार मंत्री गोकुल प्रसाद बासुटा ने ये बात कही। ये बताते हुए कि सरकार जमीनों के संरक्षण के लिए सरकार सचेत होकर काम कर रही है, उन्होंने सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी विषय को अतिरंजित न करने का आग्रह किया है। पत्रकार के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि नेपाल द्वारा अमेरिका की वैदेशिक सहायता एजेंसी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन एमसीसी के मार्फत सहयोग लेने के संबंध में राजनीतिक दलों के बीच विवाद होना जरूरी नहीं है। सरकार ने कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रदेश की विद्युत वितरण प्रणाली के विस्तार और स्तरोन्नति के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से करीब 12 अरब 76 करोड़ रुपए ऋण सहायता लेने का निर्णय लिया है। बीते पौष 28 गते को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णयों को सार्वजनिक करने के लिए आज सिंह दरबार में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बासुटा ने यह बात बताई। इसके अलावा बैठक में नेपाल और चीन के बीच फौजदारी विषय में पारस्परिक कानूनी सहायता संबंधी संधि को स्वीकृत कर कानूनी व्यवस्था के तहत संघीय संसद में जानकारी के लिए पेश करने, राष्ट्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला संचालन संबंधी विधेयक तैयार करने की स्वीकृति देने, हुलाकी राजमार्ग परियोजना कार्यालय वीरगंज अंतर्गत तामागढ़ी सिमरौनगढ़ सड़क विस्तार तथा स्तरोन्नति के लिए आवश्यक जमीन अधिग्रहण करने के लिए स्वीकृत देने लगातार निर्णय सरकार ने किए हैं। इसके अलावा कई अन्य निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक ने किए हैं। सांसदों ने मीडिया काउंसिल को स्वतंत्र, सक्षम और स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। राष्ट्रीय सभा विधान व्यवस्थापन समिति में आज नेपाल मीडिया काउंसिल विधेयक 2075 के ऊपर धारागत विचार विमर्श की गई थी। इस अवसर पर सांसदों संशोधनकर्ता ने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि प्रेस को सजा के द्वारा कड़ा बनाने की बजाय स्वनियमन सिद्धांत के आधार पर बनाया जाना चाहिए। साथ ही काउंसिल ने स्वनियमन एवं आचार संहिता के अनुगमन को विशेष महत्व देने की बात कही है। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दल की बैठक कल संसदीय दल के कार्यालय सिंहदरबार में होगी। वर्तमान समय में सभामुख के विषय में चल रहे विवाद के कारण रुकी हुई संसद बैठक के बारे में विचार विमर्श के लिए बैठक बुलाई गई है। इसकी जानकारी पार्टी के प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाड़ ने दी है। भूकंप से सुरक्षित पुराधार दीर्घकालीन और समृद्धि का आधार के नारे के साथ 22वां राष्ट्रीय भूकंप सुरक्षा दिवस आज विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमों के आयोजन करके मनाया गया। विक्रम संवत 1990 माघ 2 गते आए महाभूकंप के स्मरण में विक्रम संवत 2055 साल से माघ 2 गते को राष्ट्रीय भूकंप सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। विक्रम संवत 2072 बैसाख 12 गते शनिवार दोपहर गोरखा की बारपा केंद्र बिंदु होकर भूकंप आया था, जिसमें करीब 9000 लोगों की जान गई थी। भूकंप में 8 लाख से अधिक घर नष्ट हुए थे, वहीं 900 से अधिक घर पुरातात्विक संपदा ध्वस्त हुई थी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापार विश्राम का।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटिसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसी को डे प्याक लिन *14# ह्यास डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री घनश्याम भूषाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र में परंपरागत प्रणाली को छोड़कर आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली के द्वारा कृषि उद्यम संचालन करना चाहिए। रूपंदेही के अमुआ में शुरू हुई रूपंदेही मत्स्य कृषि तथा माघी महोत्सव का उद्घाटन करते हुए मंत्री भूषाल ने कहा कि कृषि के हरेक क्षेत्र में संरक्षण जरूरी है और इस दिशा में सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। साथ ही मंत्री भूषाल ने यह भी कहा कि आने वाले 5 वर्षों के अंदर कृषि में आत्मनिर्भर बनने के लिए योजना और कार्यक्रमों को लाया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने माघ 9 गते होने वाली राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन के लिए आवश्यक मतपत्र की छपाई 7 प्रदेशों में रहे निर्वाचन अधिकृत के कार्यालयों में पहुंचाने की जानकारी दी है। निर्वाचन के लिए कुल 6,260 मतपत्र की छपाई कर समूह एवं मतदाताओं की संख्या के आधार पर संबंधित निर्वाचन अधिकृत के कार्यालयों में भेजे जाने की जानकारी निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता एवं सह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ ने दी है। बता दें कि निर्वाचन प्रदेश सभा सदस्य में 550 और स्थानीय तहों में कुल 1,506 मतदाता शामिल हैं। नेपाली सेना द्वारा जल्द ही एकीकरण मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य नेपाल के एकीकरण के अभियान से संबंधित ऐतिहासिक संपदाओं एवं स्थलों को समेटना है। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह द्वारा शुरू की गई एकीकरण अभियान में योद्धाओं द्वारा प्रयोग किए गए रस्ते, बनाए गए दरबारों, किलों आदि का नेपाली सेना द्वारा एकीकरण मार्ग निर्माण किया जाएगा। सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डे में आज आयोजित कार्यक्रम में प्रधान सेनापति पूर्ण चंद्र थापा ने कहा कि एकीकरण मार्ग कार्यक्रम अंतर्गत इतिहास एवं संस्कृति के संवर्धन एवं प्रवर्धन करने के कार्य में संघ, प्रदेश और स्थानीय सरकार की भी सहयोग की अपेक्षा रहेगी। नेपाली चलचित्र के उत्थान एवं विकास के उद्देश्य से आगामी फागुन महीने में नेपाल अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान निफ ने आज काठमांडू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। इस चलचित्र महोत्सव में नेपाल, भारत, चीन, अमेरिका, फ्रांस सहित 40 देशों की फिल्मों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। इस बात की जानकारी निफ के अध्यक्ष केबी पाठक ने दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सीरिया की विद्रोही नियंत्रित इदलिब शहर में वहां की सेना द्वारा की गई हवाई कार्यवाही में कम से कम 21 लोगों की मृत्यु हुई है। व्यापारिक क्षेत्र में की गई इस कार्यवाही में रूसी एवं सीरियाली सेना द्वारा किए जाने की बात अधिकारवादियों ने बताया है, लेकिन बावजूद इसके गठबंधन सेना ने इस विषय में कुछ भी नहीं कहा है। वहीं पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीर में हुई भारी हिमपात और आंधी के कारण मरने वालों की संख्या 64 पहुंच गई है। अत्यधिक प्रभावित नीलम उपत्यका में दर्जनों व्यक्तियों के दबे होने की आशंका में हो रहे उद्धार के क्रम में 12 वर्षीय एक बच्ची को बर्फ में दबे होने के 18 घंटों के बाद जीवित उद्धार किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। विप्लव समूह की पिछली गतिविधियों ने उस समूह के आतंकारी होने के सरकार के दावे को पुष्ट किया है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बासुटा का कथन। 22वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आज मनाया गया विभिन्न कार्यक्रमों के साथ। मीडिया काउंसिल को स्वतंत्र, सक्षम और स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित करने की बात पर सांसदों ने दिया जोर। और सीरिया के इदलिब शहर में सेना के हवाई कार्यवाही में कम से कम 21 लोगों की हुई मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए आगे दीजिए, सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।